यही कि एक लड़की की शादी होते होते रुक गई।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये इत्तेफाक है बस। अब शादी कुछ दिन बाद हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी चलना है।
किसको इंतजार होगा एक काले कपड़े वाली दुल्हन का मामा? मैं नहीं जाऊंगी।
कैसी बातें कर रही हैं अम्मी?
सच कह रही हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। जो भी कपड़े सामान वगैरह ले जाना चाहती है ले जाने दो, सारा सामान गाड़ी में रख के उसके घर छोड़ के आओ। मैं नहीं चाहती कि वो हर बात के लिए मेरा दरवाजा बजाए। कल आएगी नमक चाहिए, परसों आएगी चीनी चाहिए, जो भी चाहिए उसे दे दो ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए और उसको भी आराम आ जाए।
अम्मी ये कोई अच्छी बात?
ये अच्छी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं है अम्मी। अम्मी अब ये घर भी उसी का ही है, अब ये घर और वो घर एक ही है। आखिरकार अम्मी
क्या कहना चाहते हो? कहीं तुम ये इंतजार तो नहीं कर रहे कि मरहूम के जहलुम के बाद तुम शान शौकत से शादी कर लो?
शान शौकत की क्या बात है अम्मी, बगैर शोर शराबे की शादी होती है क्या?
अपने कान खोलो, सुनो लोग क्या बातें कर रहे हैं।
मेरी बात सुने अम्मी, मेरी माँ सुने तो।
मेरी माँ क्या, तुम्हें लगता है सिर्फ मैं कह रही हूँ? सब कह रहे हैं, अभी उस लड़की कदम इस घर में भी नहीं पड़े और वो तुम्हारे बेचारे चाचा।
अम्मी जान आपको पता है चाचा की उम्र तो पहले ही काफी थी।
हाँ काफी उम्र हो गई थी, 100 साल तक जिंदा रहते अगर इस लड़की का साया ना होता इस घर पर। उसकी आंखें, उसके कदम, उसका साया, ये वो बातें हैं जो मैंने सुनी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ।
ओहो सताइश, 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 सताइश मेरी बात सुनो, सताइश।
होश में नहीं है क्या आप?
माफ कीजिएगा।
माफी मांगने से क्या होगा, अगर चोट लग जाती तो क्या हो जाता? अंधी क्यों चलती हो रोड पे?
ये अंधी नहीं, तुम अंधे हो। 10 दफा माफी मांग रही है तुमसे, क्या तुम अंधे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ और जाओ यहाँ से। बैठो और दफा।
तो बात करता
है। अरे कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, बैठो और दफा हो यहाँ से। खैरियत से हैं आप? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैंने भगा दिया उसे, गया वो। मोहम्मद, मोहम्मद, अरे दरवाजा खोलो।
अस्सलाम वालेकुम।
अंदर जाइए आप।
सताइश,
कुछ नहीं है।
क्या हुआ है ताहिर?
मैंने जैसे ही दरवाजे की बेल बजाई तो मैंने किसी टैक्सी के ब्रेक की आवाज सुनी। सताइश का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ।
सताइश, सताइश कहीं लगी तो नहीं?
सब लोग कहते हैं कि खुदा है, खुदा है, हर चीज खुदा के हाथ में है, जो वो चाहता है वही होता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो सब लोग भाग क्यों जाते हैं?
तुम ठीक से बता क्यों नहीं रही हो मेरी बहन? अच्छा बताओ हुआ क्या है?
और अगर कहीं खुदा ने ये लिखा है कि जो मेरे लिए मेरी नई जिंदगी का पहला दिन हो किसी और की जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? बोलो मेरी गलती है क्या?
नहीं, किसी ने कुछ कहा है?
क्या वो मेरी वजह से मरे हैं? मैंने मारा है उन्हें, मेरे मनहूस कदम है, मैं मनहूस हूँ क्या? तो फिर इसमें खुदा क्या कर रहा है?
आखिर तुमसे ये बातें किसने की हैं?
बाबा हमेशा कहते हैं, औरत का लिबास सफेद से शुरू और सफेद पर खत्म होता है। दुल्हन के कपड़ों में आती है और कफन में वापस जाती है, और दूसरा कोई लिबास इनसे बढ़कर नहीं होता। और जब एक लड़की शादी के लिए हाँ करती है तो शौहर की हर मुसीबत वो अपने सर ले लेती है, उसकी परेशानी, बेरोजगारी, बदकिस्मती, सजा और जजा। तो फिर आखिर मर्द किस लिए होते हैं? उसकी माँ के दिल में जो कुछ आया उन्होंने मुझे कह दिया। उसकी माँ ने मुझे बार बार मनहूस कहा। वो वहाँ अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कहा उसने अपनी माँ को। मोहम्मद,
क्या हुआ है?
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा दिल कर रहा है अभी जाकर उसकी गर्दन अलग कर दूं। वही हमारा बहनोई।
अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ मुझे।
नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। क्या करूं, तुम देख रहे हो?
नहीं नहीं, जाओ तुम जाकर देखो, हम बाद में बात करते हैं।
मैं तुम्हें फोन करूं?
हाँ ठीक है,
अपना ख्याल रखना।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। ताहिर, मैं आज ही रात को फोन करूंगा तुम्हें, इंतजार करना।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या मेरी बेटी के कदम मनहूस हैं?
उनका सारा सामान मुझे पहले से चोरी का लगता था। कल उनका सारा सामान जमा कर देना, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मैं खुद उनका सारा सामान देकर आऊंगा। सताईश मेरी बेटी।
मेरे लिए आप परेशान ना हो बाबा।
इसके पीछे जाओ।
ये ले मामा, ये भी उसमें रख दें। दरअसल ये भी वो लोग मेहंदी की रस्म में ही लाए थे।
अभी जाके मैं तुम्हारा लॉकेट लेकर आती हूँ।
नहीं मामा, रहने दे, मेरे पास दूसरा मौजूद है।
ये क्या है सताईश?
मोहम्मद ने बनवाया था जब वो बॉर्डर पर था। मामा ही मुझे पहना देंगी।
कप चाय पी लें।
मैंने ये फैसला ठीक किया है ना नरगिस? उसकी तबीयत ठीक हुई?
वो तो ठीक है, मगर मेरी नहीं।
क्यों?
आपके ख्याल से हमारा फैसला ठीक है, वो भी इतनी जल्दी?
नरगिस, तुमने हमारी बेटी की हालत देखी है।
मगर हमें इस बात अपनी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहिए।
मसला इस बात का नहीं है, अगर कोई ऐसी बात कह सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है।
मुमकिन है ना करे। सताईश को एक बात की वजह से इस तरह नहीं करना चाहिए। फैसला करे, मशवरा करे, उसको कोई तमाशा नहीं करना चाहिए।
उसकी कोई गलती नहीं है नरगिस, गलती मेरी है, मैंने गलती की है।
खुदा ना करे महमूद, आपने क्या गलती की है?
सब गलती मेरी है, जानती हो नरगिस?
जब मैं उनसे मिला तो बिल्कुल नहीं समझ पाया।
तुम्हें याद है जब उसकी माँ सताईश का रिश्ता लेकर आई थी, फाल निकलवाने की बात कर रही थी?
उन्होंने कहा कि
जो लड़की हमारे लड़के के लिए ठीक रहेगी वो बिल्कुल सताइश की तरह है। उसने जब इस तरह की बातें की, मेरी सताइश की तारीफ की, उस वक्त उसकी बात को मैं बिल्कुल नहीं समझा। हाँ, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई जादू टोना और इस तरह के चक्रों में पड़ जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं सब कुछ देखकर भी नहीं समझ सका और मैं जानता था कि ये बातें वहां अपना रंग जरूर दिखाएंगी और आखिर वही हुआ जो मैंने सोचा था।
नहीं मालूम महमूद, नहीं मालूम जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं।
देखो नरगिस, मुझे शक में मत डालो।
पहले हमें इत्मीनान करना होगा।
इत्मीनान हो जाएगा।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं?
मैंने इस्तखारा किया है, वो बुरा आया है।
ये इस्तखारा आपको जब ही करवाना चाहिए था जब हमारे पास रिश्ता लेके आए थे।
उस वक्त इस्तखारे की जरूरत नहीं थी। इस्तखारा जरूरी नहीं था। जब इंसान के दिल में कोई शक आ जाए और वो सारी अच्छाई एक तरफ कर दे तो इस्तखारे की जरूरत पड़ती है। कल किसी को भेज दूंगा, जो भी जहेज का सामान होगा वो आकर ले जाएगा।
नादरी साहब, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट रुके आप।
कोई मसला है तो बता दें, बाद में आकर ले जाएंगे।
नहीं, मुर्तुजा हो या ना हो फिर भी मैं भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है।
अम्मी जान,
क्या तुम सुन नहीं रहे कि इस्तखारा अच्छा नहीं आया? अब कोई बात बाकी नहीं रही।
नहीं, बाकी नहीं है।
नादरी साहब, एक मिनट रुके, मेरी बात तो सुने। नादरी साहब, मेरी अम्मी जहनी मरीज है, उनका हक मुझ पर ज्यादा है। घर की सारी जिम्मेदारियां वाले साहब के मरने के बाद मेरी अम्मी ने ही उठाई है। अगर आप इजाजत देंगे तो सब कुछ ऐसे ही रखा रहेगा, बस 30-40 दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरे बच्चे, 30-40 दिन तो कुछ भी नहीं, 30-40 साल भी कम है। जो जख्म तुम्हारी माँ ने दिया है वो ठीक होने वाला नहीं। भेज दूंगा उनको, सामान वगैरह ले जाएंगे।
नादरी साहब, मेहरबानी करें।
जल्दी करो बच्चों, सारा सामान यही रख दो, जल्दी करो। शाबाश, जल्दी उतारो, ये मुझे दे दो। सारा सामान स्टोर में रखवा दिया है। तुम बाहर क्यों नहीं आई?
मैं तो बाहर ही थी, लेकिन पड़ोसी इस तरह देख रहे थे कि मैं अंदर आ गई।
देखो मेरी बच्ची, ये दिन ऐसे ही गुजरते हैं, हमारी दुनिया भी इसी तरह चल रही है। जो उम्र तुम्हारे पास है, ऐसी हजार बातें होंगी जिनसे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, या हजार बातें ऐसी भी होंगी जिन पे तुम्हें गुस्सा आएगा। अगर ये मसला उन हजार बातों में से एक हो तो हमें उसको खत्म कर देना चाहिए। जाकर अपना मुंह हाथ धो लो, चलो उठो, चलो जाओ, अपने बाबा के लिए चाय बना के ले आओ ताकि मैं पीकर काम पे चले जाऊं।
जी अच्छा बाबा जान।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, आप नोश फरमाएं।
खुदा हम सबकी हिफाजत करे हाजी साहब, आपकी चाय हमारे लिए शिफा से कम नहीं।
आप तो बहुत मीठी जबान बोल रहे हैं सैयद रजा।
जो भी हूँ ये सब आपने ही सिखाया है हाजी साहब।
हाँ, कल तक तुम ऐसे बोलते थे।
सम्भालो लिमन हामिदा। अल्लाहु अकबर।
कितना वक्त लगा था तुमको ये सब सीखने में, अब तुम इस मकाम पर आ गए हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अभी कहाँ हो?
फौजी हेडक्वार्टर में हूँ।
सुन के बहुत खुशी हुई। यहाँ कैसे आना हुआ? किसी की तलाश में आए हो क्या?
बस क्या बताऊँ आपको हाजी साहब,
खैरियत तो है ना?
नहीं हाजी साहब, आप तो जानते हैं कि हाजी नादरी साहब के मुझ पर कितने एहसानात हैं। जैसे कि आपने खुद मुझे अपने बेटे की तरह समझा है।
तुम कहना क्या चाहते हो सैयद रजा? मामला क्या है आखिर?
हमारी ये ड्यूटी लगाई गई है कि उनके बेटे को कहीं भी ढूंढें और उसे गिरफ्तार करें।
हाजी नादरी के बेटे को?
जी।
लेकिन क्यों?
वो भागा हुआ है हाजी साहब।
ये नहीं हो सकता, हाजी नादरी का बेटा? हैरत है।
कुछ सामान लेने के लिए आया था, सामान लेकर गया फिर वापस नहीं आया और वहीं से फरार हो गया।
ये कैसे मुमकिन है? आखिर कैसे?
वो नादरी साहब का बेटा है और आप इस बात को नहीं जानते कि उसके ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ थे। उसके सब जानने वाले भी ऐसे ही थे। मैं 2-3 दफा आया था आपसे और नादरी साहब से बात करने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अगर काश मैंने आपको बता दिया होता। ये उसे गिरफ्तार करने के वारंट हैं। आज उनके घर के दरवाजे तक भी गया लेकिन आगे ना जा सका। मैंने बहुत कोशिश की मगर ना जा सका। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो भी जानता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब आपकी और हाजी नादरी साहब की बदौलत है। मैं नहीं कर सकता, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं होगा। मेरी नज़र में नादरी साहब की भी वही अहमियत है जैसे आपकी।
मैं क्या कर सकता हूँ?
आप इस बात को हाजी नादरी साहब तक पहुँचा दें कि ये किसी के अख्तियार में नहीं, मेरी मजबूरी है उनके बेटे को गिरफ्तार करना।
अस्सलामुअलैकुम नादरी साहब।
वालेकुम अस्सलाम हाजी नुसरत, आपका आना मुबारक हो। शर्मिंदा हूँ, मैं आपके पास आ ही रहा था। आइए ये लीजिए जनाब, अपना मुंह मीठा कीजिए, लीजिए।
बहुत शुक्रिया आपका।
जानता हूँ कि आजकल आप बहुत मसरूफ हैं, सोच रहा था कि आज आपकी तरफ आ जाऊं। गलती है मगर कसूर नहीं है। आपको बताया था अपनी बेटी की शादी में मसरूफ था।
जी हाँ मुझे मालूम है,
मगर क्या बताऊं, मेरी बेटी की शादी गम में बदल गई और शादी रोक दी।
लेकिन क्यों?
ये सब शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। खैर छोड़ो, आप कैसे?
हाँ मैं ठीक हूँ। मोहम्मद कैसा है?
ठीक है अल्लाह का शुक्र है। सच है हाजी, और इस हाल में जब भी मेरा दिल घबराता है तो मैं मोहम्मद के पास बैठ जाता हूँ। गुरूर नहीं हाजी, 1000 दफा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमत दी है, हमने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की है और उस परवरिश का सिला मेरे बेटे ने मुझे दे दिया। मेरा बेटा वहाँ अकेला था और सामने दुश्मन का पूरा दस्ता, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटा। अल्लाह का 1000 मरतबा शुक्र है। और अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई गुस्सा भी है तो हाजी साहब, ये बच्चे हमारे लिए खुशियाँ ही लाते हैं। आपको पता है हाजी साहब, 1 महीने की छुट्टी ज़बरदस्ती दी है, ज़बरदस्ती। मैं तो आज सिर्फ अपनी ही बातें लेकर बैठ गया। अच्छा जनाब, माफ करना, आखिर हम भी तो इंसान हैं, बच्चे तो गलतियां करते हैं, बड़ों का काम है उन्हें माफ करना।
मैं कुछ और बात करने आया हूँ हाजी।
बताओ फिर क्या बात है? मैंने आपको मिठाई भी दी और आपने खा भी ली, अल्लाह ना करे जहर तो नहीं दिया, और अगर जहर दे देता तो 30 साल के दोस्त से हाथ धो बैठता। समझ गए हाजी, अब इसमें नाराज होने की क्या बात है?
उसको 1 महीने की छुट्टी नहीं मिली है।
नहीं मिली है?
कोई काम का बोनस भी नहीं मिला है। वो टैंक और मुहासरा तोड़ना जो भी बातें हैं वो सब झूठ है हाजी।
क्या मतलब?
वो वहां से 20 दिन से भागा हुआ है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं।
यानी वो एक महीने से फरार है।
अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गए आप, क्या हुआ?
मोहम्मद कहाँ है?
वो तो घर पे है, खैरियत है? क्या हुआ है? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है?
पूछ लो।
तुम कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो?
अपनी माँ को बताओ। कह रहा हूँ अपनी माँ को बताओ। तुम्हारा बेटा जंग से भाग कर आया है।
मोहम्मद,
तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी इज्जत खत्म कर दी। बुज़दिल,
आप चाहते हैं कि मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊं? जिससे आपकी इज्जत सिर्फ चंद लोगों में रह जाए?
मैं लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तुमने उस खुदा के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। जो उसने मुझे अमानत दी थी, मैं उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सका। देखो, तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया बेटा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।
आपकी इज्जत ये थी कि मेरे जिस्म के टुकड़े किसी तोप के सामने पड़े होते, यही चाहते थे क्या?
बस करो मोहम्मद, बस करो।
मारे मुझे, जितना दिल चाहे मारे।
कौन बाप होगा जो चाहेगा कि उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े हों? कौन सी ऐसी माँ है जो ये चाहती हो कि अपने बेटे की दुल्हन को न देखे? मगर जिस सरजमीन के दुश्मन ही दुश्मन हों, तो बच्चों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुसलमानियत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। ये सरजमीन तुम्हारा भी वतन है। समझते हो ना कि वतन का मतलब क्या होता है?
मुझसे नहीं हो सकता बाबा जान, मैं अभी मरना नहीं चाहता। वहां सब बड़े दिल के लोग हैं, मैं क्या करूं? मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल उन जैसा नहीं हूं। अब आप मुझे डरपोक कह रहे हैं, बोलें। मैं हूं डरपोक, क्या करूं? ऐसा ही हूं। मेरी जिंदगी का सवाल है। किसी का सर कटना, हाथ कटना, पैर कटना रोज का मामूल है वहां पर। वहां जिबा होना सच है, जो जख्म मिलता है वो भी सच है, उसमें से जो खून निकलता है वो भी सच है, वहां की मौत भी सच है, सब कुछ सच है वहां पर। मैं वो चीजें वहां पर देखता हूँ, पूरी रात बेचैन रहता हूँ मैं। मैंने एक दोस्त को देखा जो मेरी तरफ भाग रहा था, अचानक एक गोला उसके सर पर लगा और उसका सर अलग हो गया। एक और दोस्त था मेरा, वो कटोरे में पानी दे रहा था मुझे, एक गोला उसकी कमर से घुसा और सीने से बाहर निकल गया। अभी भी उसका हाथ मेरी तरफ सीधा था, वो मुस्कुरा रहा था, उसे पता ही नहीं कि वो मर चुका है।
या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया है? इस नाअहल की मैंने किस तरह तरबियत की थी?
अब आप मुझे नाअहल कह रहे हैं? मेरी कोई हैसियत नहीं है? आपने मुझे डरपोक बोला, ठीक है बोला, मगर मैं तैयार नहीं हूं किसी भी वजह से अपनी जान देने के लिए।
क्या बोला? जान दोगे? तुम समझते हो कामयाब हो गए? उन लोगों को कहते हैं कामयाब। तुम कामयाब नहीं हो बदकिस्मत, कामयाब मैं हूं। अभी भी तुम अपनी जान किसी को नहीं दे रहे हो, बिल्कुल डरपोक हो तुम। अब पुलिस वाले तुम्हारे पीछे हैं, तुम दुश्मन से डर कर भागे हो। मसला ना अहली और गद्दारी का नहीं है, मसला फौजी अदालत का है। उनको सब मालूम है। वो तुम्हारे लिए घर तक आ रहे थे। आज अगर हाजी नुसरत उनको रास्ते से दुकान न लेके जाते तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उन्होंने हमारी इज्जत की खातिर एक दिन की मोहलत दी है। तुम कल सुबह जाकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दोगे। शायद अभी भी कोई रास्ता हो। जो कुछ इसको चाहिए इसको दे दो, ये कल सुबह जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम देगा। और ये बात नहीं है कि खुदा के सामने तुम्हारे घर वाले और लोग सुरखरू हो सकें, ये आरजू मर गई। ये काम इसलिए कि तुम अपनी फरियाद खुद सुन सको।
कहाँ जा रहे हो महमूद?
मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ।
मजीद बेटा।
हाँ बोलो बाबा।
अनार की 15 पेटियां हैं, गिन लेना।
कमाल।
जी साहब बोले।
सुनो।
जी।
पोर्ट पर जब तक सब सामान उतर कर लोड न हो जाए वहीं रहना। लोडिंग के बाद वापस। इसके बाद भी कुछ चीजें ज्यादा हैं, डीलर उसके पैसे देगा। समझ गए ना? बस इनको सही सलामत पहुंचा दो।
जो मिलाना नहीं। आपका ठीक है।
अभी अनार कच्चे हैं।
अच्छा।
अगर खराब हुए तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा। वहाँ आबियाम को जानते हो?
जी हाँ जानता हूँ।
फलों का जायका उनको नहीं चाहिए, बस इसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। अनार की शक्ल खराब नहीं होनी चाहिए कमाल, समझे?
जो हुक्म आपका। क्या जनाब, मैंने अपना काम अच्छी तरह नहीं किया गया?
ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हर्ज ही क्या है? अब खैरियत से जाओ। ताहिर, ताहिर।
जी बाबा जान।
आ जाओ बस बेटा, चलो चले हम। सुनो, तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे लिए पाए बनाए।
नहीं, खुदा का वास्ता बाबा जान, आपने 2-3 दिन में इतना खाना खिलाया है कि अभी तक हलक तक है। बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ, भूल गया हूँ बिल्कुल। मैं फुटबॉल की तरह 3 किलो मोटा हो गया हूँ, खुदा गवाह है बाबा जान, अब और नहीं।
सुनो।
जी।
ये बातें तुम खुद उसको कहो, कुछ दिन बाद वो कहेंगी हमारा बेटा तो गोश्त कबाब है। अब चलो।
चले बाबा जान।
नहीं, वहाँ हमारी गाड़ी में जाएंगे, तुम्हारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी कार के शॉप की।
बाबा जान,
मेरे साथ चलोगे तो गपशप करेंगे और कुछ काम भी है।
ताहिर साहब
चले,
आपका फोन आया है अंदर।
तुम्हारी माँ होगी। हाँ। सुनो।
जी जनाब।
कहो, निकल रहे हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे।
साहब घर से नहीं है, इनके किसी दोस्त का फोन है, बोलना ताहिर साहब को बुला दें।
बेवकूफ, देखो कौन है, जल्दी वापस।
मैं भी आया बाबा जान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हो, क्या हुआ मोहम्मद? सुनो, हो सके तो मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊं। नहीं, उफ, लेकिन हुआ क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हाँ बस निकल रहा हूं। ओके।
अरे यहां क्यों खड़े हो, जल्दी आके बैठो।
बचान, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है।
बेवकूफ, कौन था, क्या हुआ?
मेरा दोस्त है, ड्यूटी पर भी मेरे साथ था, मोहम्मद नादरी, शायद किसी परेशानी में है तो सोचा जाकर मिल लूं उससे।
अच्छा तो उसको कहो कल रात को मिल लेंगे। तुमसे मिलना इतना जरूरी है कि वो तुम्हारे मिले बगैर दवाई
भी नहीं
पिया था?
उसको मेरी जरूरत है, कह रहा था शायद किसी परेशानी में है, इसलिए मुझे जाकर मिलना होगा उससे भी।
सुनो ताहिर।
जी।
सच पूछो तो अगर तुम्हारे इस दोस्त को इतनी मुसीबत है तो मुझे बोलो।
नहीं नहीं बाबा जान, मैं जानता हूँ, शुक्रिया।
ताहिर।
जी।
तुम्हारे पास पैसे?
जी बाबा जान, है मेरे पास, शुक्रिया।
नहीं, ये कुछ और पैसे।
नहीं बाबा जान, बिल्कुल पैसों का मसला नहीं है, उसे मुझसे कोई काम है इसलिए शायद बुला रहा हूँ, मैं जाकर देखता हूँ उसे। शुक्रिया।
ठीक है। सुनो बेटा।
जी।
मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे।
शुक्रिया बाबा जान, इजाजत दें मुझे।
ममा क्या बाबा के पास चाबी नहीं है?
पता नहीं, भूल गए होंगे।
सताईश, तुम बैठो, मैं देखता हूं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ।
क्या हुआ है मोहम्मद?
अंदर तो आओ।
नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम है। क्या हुआ है?
अरे हाँ भाई, सब खैरियत है, तुम अंदर तो चलो, सब बताता हूँ तुम्हें।
भाई मुझे देर हो रही
अंदर
है।
अंदर तो चलो।
अल्लाह।
आ जाओ ताहिर, अंदर आ जाओ, आ जाओ।
ये तो उसका ऑफिसर था, ये यहाँ क्यों आया है?
वाह मामा, उसका दोस्त है, अगर मिलने आ गया तो इसमें क्या बुराई है?
अच्छा, अगर सोच रही हूँ कहीं ये वो तो नहीं जिसकी वजह से मोहम्मद भागने में कामयाब हुआ है।
मम्मा आप ये कैसी बातें करती हैं?
सुनो सताईश, जाओ उनके लिए चाय ले जाओ। वापस निकलते हुए दरवाजा खुला छोड़ देना ताकि उनकी बातें हम सुन सकें। जाओ।
सुने मोहम्मद भाई, चाय ले लें।
लाओ, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सताईश
जी, बोले भाई।
दरवाजा बंद करके जाओ।
जी अच्छा भाई।
ये लो चाय पियो।
मुझे जल्दी बताओ मोहम्मद, तुम बता रहे थे कोई काम है, परेशान हो, क्या हुआ है बताओ मुझे।
मैं बस तुमसे मिलना चाह रहा था।
देखो मोहम्मद, मेरे बाबा घर में इंतजार कर रहे हैं, जब तक नहीं जाऊंगा खाना नहीं खाएंगे। बस फिर इधर उधर की बातें मत करो और मकसद की बात पर आ जाओ। बताओ नहीं बताओगे तो मेरा दिल काफी घबरा रहा है, बस जल्दी से अपनी बात पर आओ।
सीधा मकसद पे आ जाओ।
असली मकसद पर आ जाओ।
असली मकसद पे आ जाओ। मेरी मदद करोगे?
ये तो घुमा फिरा के करने वाली बात ही नहीं है। तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए?
देखो मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो।
हाँ ठीक है, लेकिन बताओ कि क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे।
मेरी मदद करो ताकि मैं किसी और मुल्क चला जाऊं।
क्या काम करूं?
मैं बहुत जल्द इस मुल्क से निकलना चाहता हूँ।
मुझे सच बताओ, क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो मोहम्मद? क्या तुम जानते हो तुम्हारी बात का क्या मतलब है?
इस मुल्क से निकलने में मेरी मदद करो ताहिर, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ।
ए सताईश, क्या हो? क्या हुआ?
कुछ नहीं।
कुछ छुपा रही हो?
मामा क्या हुआ है आपको? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप हर बात अपने दिल पे क्यों ले लेती हैं? आपको डॉक्टर ने भी कहा है कि परेशानी और टेंशन ठीक नहीं है आपके लिए। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है कि इस वक्त उसका दोस्त उससे मिलने आ गया है? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं मम्मा।
अपनी तरफ से बातें कर रही हो, अभी तुम माँ नहीं हो जो समझ सको। उस वक्त जब तुम्हारी आंखें और कान काम नहीं करते थे तो पूरी जिंदगी माँ ही अपने बच्चे का काम करती है, तुम समझती क्यों नहीं? मैं परेशान हूँ।
आखिर क्यों, क्या हो, क्या गया है मामा? आप क्यों इतना सोच रही हैं, बताएं मुझे।
मुझे नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सोच रही हूँ कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरी इत्तला सुनने वाली हूँ। मुझे नहीं मालूम सताईश, بلکہ محمد نے کس لیے اپنے اس دوست کو بتایا اور وہ اٹھ کر فوراً یہاں آ گیا؟
میری مدد کرو یہاں سے جانے میں طاہر، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔
نہیں، تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو۔
یاد ہے تم محاصرے میں تھے، 3 دن تمہیں بخار رہا اور تم بے ہوش تھے۔
ہاں مجھے یاد ہے۔
کون تھا اس جگہ پہ جو 3 دن تمہارے سرہانے بیٹھا رہا؟ کون تھا وہ جو گیلی پٹی رکھ رہا تھا تمہارے سر پہ تاکہ بخار کم ہو؟
محمد مجھے یاد ہے، بالکل تم نے ہی میری جان بچائی تھی، پھر کیا ہوا؟
تم نے ہی کہا تھا میرے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤ گے تم۔
ہاں مجھے یاد ہے میں نے کہا
تو چکاؤ اب۔
محمد آخر یہ کام؟
بھائی واہ، تم نے نہیں کہا تھا میں تمہارے ساتھ بارڈر پہ چلوں؟ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو تمہارا سہارا بن جائے گا، میں مستقل وہاں پہ لڑتا رہا۔
میں واپس آ گیا تھا محمد۔
لیکن میں واپس نہیں آیا تھا۔
او خدایا تم پاگل،
کسی کا ایڈریس دے دو، ٹیلی فون نمبر دے دو،
پاگل
کچھ بھی دے دو تاکہ میں اس سے جا کے مل سکوں۔
پاگل ہو گئے ہو تم، اپنے ہاتھوں سے خود کو کنویں میں گرا رہے ہو۔
میں ابھی بھی کنویں میں ہوں
محمد۔ نہیں تم کنویں میں نہیں، تم ابھی بھی جا کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لو اور کہہ دینا کہ اپنی چھٹی سے 10 دن زیادہ رک گیا کیونکہ میری ماں کی طبیعت خراب تھی۔ محمد یہ کام کیا ہے؟
میں چھٹی پر نہیں آیا ہوں۔
کیا؟
میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں چھٹی پر نہیں ہوں، بھاگ کر آیا ہوں۔
نہیں یا اللہ، یہ تم نے کیا کر دیا محمد؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کر دیا؟
بس جو سمجھ میں آیا کر دیا۔
آخر کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟
کچھ نہیں ہوا مجھے، بس میں مرنا نہیں چاہتا ابھی، میں ابھی باہر جانا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔
یعنی ہم سب جو وہاں ہیں انسان نہیں ہیں، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔
اب تم مجھے نصیحت کر کے مت سمجھاؤ۔
تمہاری بات کا جواب ہے نصیحت نہیں ہے، نصیحت کا وقت گزر گیا، تمہاری بات کا جواب ایک زوردار تھپڑ ہے۔
وہ میں اپنے بابا سے کھا چکا ہوں، تم دیر سے آئے ہو۔
چلو دوبارہ ان کے لیے چائے لے جاؤ۔
مما اگر اس کو چائے چاہیے ہوگی تو وہ بول
دے۔ میں کہہ رہی ہوں لے جاؤ۔
ماں
ستائش، میرے گھر میں دروازہ بند کر کے خسر پسر مجھے پسند نہیں ہے۔
مما شاید وہ لوگ کوئی ضروری بات کر رہے ہوں۔
اوہو یہی تو، جب میرا بیٹا کسی اور کے ساتھ کوئی خاص بات کر رہا ہو جو مجھے معلوم نہ ہو تو پریشانی تو ہوگی نا۔ ان کے لیے چائے لے جاؤ اور واپسی پر دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔
میں نے تو اس وقت بھی کھلا چھوڑا تھا لیکن محمد نے بند کروا دیا۔
ستائش،
تم اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ محمد مزاق میں یہاں تک آ گئے ہو، یہ ضروری نہیں کہ تیز بھاگو تمہارے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تمہیں اپنی انٹری کروانی چاہیے جو اچھا حل ہے۔ دیکھو میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہارا ڈرائیور بن کر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے آخری قدم تک ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میرے بابا کے ہزاروں دوست احباب ہیں، 100 ڈاکٹروں کو جانتے ہیں جو تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ ہم ان ڈاکٹروں کی گواہی سے ثابت کر دیں گے تم کافی دنوں سے بیمار تھے، تم کومے میں تھے، بے ہوش تھے۔ ارے میرے بھائی، ایسا کاغذ بنائیں گے کہ تم کچھ دن کے لیے مر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ کام کروں گا جس سے تمہاری تکلیف کم ہو، صرف تم جا کر اپنی انٹری کروا لو۔ محمد،
باتیں سن رہی تھی؟
نہیں نہیں، میں تو چائے لے کر آئی۔
چائے نہیں چاہیے ہمیں، چائے نہیں چاہیے، سن لیا؟ نہیں چاہیے۔ ابھی تک اس گھر میں کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنی جاتی تھی، اب وہ بھی شروع ہو گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کوئی پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں یہاں سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے۔ جب تک میں ایسا نہیں کروں گا تم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، میں اب وہی کروں گا جو تم لوگ چاہتے ہو۔
مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری بات کو زمین میں دفن نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، تم جو کہو گے میں تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ اچھا سنو، کل میں تمہارے پاس آؤں گا، میں خود تمہیں چھاؤنی لے کر جاؤں گا، کیسا ہے؟
نہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔
کیا مطلب؟ کیا تم مجھے اپنا اچھا دوست نہیں سمجھتے محمد؟
ایسی بات نہیں، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔
ٹھیک ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، خدا حافظ.
طاہر.
ہاں
ٹھیک ہے, میں آ جاؤں گا ٹھیک صبح 6 بجے تمہاری گلی کے کونے پر.
زبردست, یہ ہوئی بات, انتظار کروں گا.
کل رات جب سے تمہیں تھپڑ مارا ہے صبح تک میرا دل جلتا رہا. وہ کون سا باپ ہوگا جو اپنی بیٹے کی موت چاہتا ہوگا.
صرف ایک بات, میں جا رہا ہوں یہاں سے, جیل چلا جاؤں, عدالت چلا جاؤں, اب سزا ہو جائے مجھے, ٹھیک ہے, پھر خوش ہو جانا سب.
ارے طاہر, کسی لڑکی کو گھر لے کر آیا ہے. میں نہیں جانتی کہ لڑکی کون ہے, لیکن بری طرح رو رہی ہے.
یہ لڑکا نالائق, میری گاڑی کی چابی لے کر آؤ.